लेकिन आज जब मालूम किया तो आपके तीनों अकाउंट खाली मिले।
सर अभी आपके अकाउंट का फैक्स भी मिल गया है, आपके तीनों अकाउंट खाली हैं और तीनों अकाउंट के चेकों पर सोशा पैनी के साइन है, आपका पुराना अकाउंट मिल जाएगा।
अर्दलान, तो 150 करोड़ चुपके से बैंक से निकाल लो।
राणा को आज मैंने वापस भेज दिया, अब तुम कहीं नहीं जाओगी बेटी।
लेकिन आपने वादा किया।
मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मुझसे लड़ाई मत करो, मुझ में लड़ाई झगड़े की ताकत नहीं है।
अगर नहीं जान लिया तो मैं यहीं रुक जाऊंगी और मरियम को आपसे अलग कर दूंगी।
पता नहीं क्यों रहा मरियम के पीछे पड़ गई है।
जमान मैडम, आप क्यों मेरे बाबा का पीछा नहीं छोड़ रही है? क्यों मेरे बाबा को अपने जान में फंसा रही है? क्योंकि उनके पास पैसे हैं?
मैं मुनासिब नहीं समझती कि रहा मेरे स्कूल में रहे। आपके पूरे खानदान का निशाना बहुत अच्छा है। तकरीबन 20 साल पहले तो आपने सीधा मेरे दिल को निशाना बनाया, मेरे और मेरे घर वालों की बेइज्जती की, और इस वक्त आपकी बेटी।
मेरी बेटी मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, इसलिए मरियम के पीछे पड़ गई है। चूंकि वो जानती है मेरे दिल में क्या हो रहा है, मेरे दिल में हंगामा है तुम्हें पाने के लिए।
मैं इस दिल को निकाल दूंगी, मेरे दिल की ये हिम्मत, तो फिर हमारे इज्जत का क्या होगा? वो काम जो उसने हमारे खानदान के साथ किया, उसे कैसे भूल सकती हूँ?
क्या हुआ बेटी?
बाबा, आपने कभी अपने बच्चों पर हाथ उठाया है?
नहीं।
तो प्लीज इस बार उठाइए। अगर आपने देखा कि मेरा दिल अर्दलान की तरफ झुक रहा है, तो ऐसा मेरे कान पर दीजिए कि मेरे होश ठिकाने आ जाए और मेरी गैरत जाग उठे। वादा कीजिए मुझसे आप।
कहा था ना, अगर उसका नाम ले तो मना मत करना।
लेकिन इस बार तो उसी ने रोकने को कहा है, उसी ने कहा है मैं दलदल में फंसती जा रही हूँ, मेरा हाथ पकड़कर बचा लीजिए। लेकिन मुझे क्यों उसका हाथ पकड़कर बचाना चाहिए? तुम कब आए यहाँ?
कुछ नहीं, बस 2 मिनट हुआ।
जलील,
क्या हुआ अम्मी?
तुम ऊपर जाओ, तुम जाओ ऊपर जाओ। जलील,
अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, कुछ होने से पहले कुछ करना पड़ता है, पछताने से कोई फायदा नहीं है, बाद में कुछ नहीं कर सकते। खत्म करता हूं तूबा बेगम। बेगम, अगर मरियम उसके आस पास नजर आई तो मैं उसे नहीं चाह सकता। बोलो तो अपनी आंखें निकाल फेंकूं, हर चीज पर आंख बंद कर लूं? जाओ अपनी बेटी के पास बैठो, तुम्हारी जान है। मैं इतना रहम दिल हूँ, भूल गई क्या? मेरे सामने कम से कम ऐसी बात मत करो, मैं लड़ाई झगड़े का इंसान नहीं हूँ। बोलो, मुझे चिल्लाना आता है। मैं जाकर कहना चाहता हूँ कि अर्दलान बेगैरत बागैरत जो भी हो, हमको परेशान मत करो, मेरी बेटी के पीछे मत पड़ो, मेरी मरियम के दिल में घर मत बसाओ। मैं लड़ाई करने नहीं जाऊँगा तूबा बेगम, जाओ आराम से बैठो, अपनी बेटी के पास बैठो ताकि उसे कुछ हो ना जाए।
बाबा कहाँ गए? क्या हुआ अम्मी? वो तो अभी एक मिनट पहले हंसी खुशी तरबूज खा रहे थे। आप किसे फोन कर रही हैं?
हेलो मोहम्मद जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम तुबा साहिबा।
जलील अभी अर्दलान के पास गए हैं, उनके घर। एड्रेस भी मरियम से लिया।
क्यों गए हैं? वहाँ क्यों गए हैं?
मरियम की वजह से। जानते तो है ना, पहचानते है ना उन्हें। जलील हंगामा नहीं करने वाले, लेकिन कुछ हो भी सकता है।
जी तुबा साहिबा, अभी तैयार होकर चला जाऊंगा। खुदा हाफिज।
हेलो यहिया, अरे हंगामा हो गया है, बाबा उस अर्दलान के घर गए हैं।
आजर आजर, गाड़ी की चाबी जरा मुझे दे दो।
गाड़ी तो खराब है, क्या हुआ है?
कुछ नहीं, ये अर्दलान की कहानी अल्फ लैला की कहानी हो गई है। जल्दी से एक टैक्सी को फोन कर दो।
ठीक है। ये क्या है?
मैं ये फानूस बनाना चाहता हूँ। क्या है पपी जान, यकीन नहीं हो रहा? आप देख लीजिए,
खाना ले लो।
बहुत बहुत शुक्रिया।
सालन भी ले लो, दही भी। घबराओ नहीं।
खाना कहाँ ले जा रही हूँ गुलबानो?
राहा के लिए ले जा रही हूँ, वो नीचे कहाँ आती है?
मत ले जाओ।
क्यों?
हम एक फैमिली हैं, साथ में खाना खाना चाहिए। दस्तरखान कहाँ है?
वो दराज में।
गुलबानो कह रही थी तुम नीचे नहीं आओगे खाना खाने के लिए, तो क्या हुआ हम ऊपर आ सकते हैं?
देखो तो क्या बनाया है गुलबानो ने, देखो पालक है। वाह भाई वाह, दस्तरखान पर पालक खाने का लुत्फ ही और है। मेरी अम्मी कहती थी कि अगर दस्तरखान पर खाना ना खाओ तो मज़ा ही नहीं आता। आओ आओ, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में पालक को ऐसे ही होना चाहिए सिया। क्या डालते हैं इसमें? टोमेटो पेस्ट? वो तो फिसंजून है। नहीं, अनार का पेस्ट डालते होंगे। आओ बैठो बैठो बेटा बैठो, आओ खाना खाएं, खा लो खा लो। बास लोग तो पालक में वो डालते हैं लोबिया, उसका मज़ा ही अलग होता है। बास तो इसमें आलू भी डालते हैं, वो क्या है? लाओ लाओ लाओ, खाया जाए, गर्म गर्म होगा। वाह क्या मज़ेदार लस्सी है। आओ आओ जल्दी आओ बेटा, ठंडा हो जाएगा। खाओ मेरा बेटा, खाओ ना। वाह वाह क्या जबरदस्त खाना है। अलबत्ता आदर मोहम्मद जवाद की बीवी भी अच्छी पालक बनाती है। खाओ ये दही भी लो, दही डालो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जबरदस्त। बाद लोग तो पालक प्याज के साथ भी खाते हैं, बहुत मजेदार होता है, लेकिन मुंह से थोड़ी बू आती है। जानती हो, ये लो खाओ मेरा बेटा। अपनी अम्मी से बात कर रही थी, पता नहीं क्यों जब फोन तुम्हारे हाथ में रहता है तो मुझे ऐसा लगता है अपनी अम्मी से बात कर रही हो। जी
दरवाजा खोलो।
कौन?
फरजाद हूँ।
कौन?
फरजाद।
देखो लड़के, मैं डसा हुआ हूं, मैं सांप हूं, निगल जाऊंगा तुम्हें। यहां क्या करने आए हो तुम? मेरे घर पर किस लिए आए हो? तुमने मुझ में क्या देखा कि मुझे बगैर समझने लगे हो? तुमने मुझ में क्या देखा कि मेरे घर की बेल बजाने आ गए? कहते हो मैं फरजाद हूं, तुमने मेरे अंदर क्या देख लिया?
तुम्हारी तर्ज जिंदगी को, गुंडागर्दी को, लूटमार को। मैं यहाँ आया हूँ ताकि ये राह को दे दो। हिम्मत है तुम मार के दिखाओ। मारा तो कानून का सहारा लेकर जलील कर दूंगा तुम्हें। जब तुम अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने सारी बातें सुन ली थी, सब कुछ बता दूंगा। या तो मुझे वो 150 करोड़ दे दोगे, या तो एक बार फिर तुम्हारी बेटी को नशे ही कर दूंगा। हाथ खोलो अपना, मुझे राजी करो। मुझे राजी करो। राजी, राजी, राजी।
ये अर्दलान की सजा है। सजा है अर्दलान, ये सजा है।
क्या हुआ अर्दलान साहब?
तुमसे कुछ काम है। कहीं बैठ जाते हैं। सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
उन दिनों को काफी दिन गुजर गए, मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम बड़े। तय था कि अब एक दूसरे को नहीं देखेंगे, लेकिन देखना पड़ गया। उस दिन स्कूल में और आज यहां, पैसों की दुनिया में मजा आ रहा है। और मंगनी के बाद किसी लड़की को मुंतजर रखना, इसमें मजा आता है। मेरी बेटी जलील जमान की बेटी उसको मुंतजर रखना, मासूम को, इसमें भी मजा आता है। मुझे ऐसे लोगों से नफरत होती है जो सीधे मुंह बात नहीं करते, और ये बात तुम जानते हो। ये उसके बाद अभी तक मेरा बोझ हल्का नहीं हो सका, मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। ना चिल्लाने की आदत थी और ना लड़ाई झगड़े की। इज्जत हाथ से बना हुआ कालीन नहीं है कि जितना उस पर बैठो तो ज्यादा कीमती हो जाएगा। इज्जत बहुत जल्दी बर्बाद की जा सकती है, जलील होने में वक्त नहीं लगता है। एक पुरानी कहावत है, ऊंट से दूरी बनाकर सो ताकि बुरे ख्वाब ना देखो। कोई रास्ता निकाल लाया हूं। मेरे हालात अच्छे नहीं थे, अलबत्ता उन दिनों के जब जवानी का जोश था और अपने को बहुत कुछ समझता था, लेकिन अब जब दाढ़ी सफेद हो चुकी है और दीवार पकड़कर चलता हूं, कुश्ती के दाव पेंच और गुंडागर्दी भी मुझे नहीं आती थी, मैं एक आम इंसान हो गया था। चूंकि कुश्ती की वजह से अपने अंदर गुरूर पैदा नहीं किया, बल्कि हमेशा एक पहलवान बनकर रहा, सबकी इज्जत की पूरियावली बनना आसान नहीं है। तुम जानते हो वो कैसे पहलवान बने? जानते हो पूरियावली कैसे पूरियावली बने? चूंकि जब वो जीत सकते थे तो हार गए। मैं नहीं कहता पूरियावली तुम बनो, लेकिन ये कहता हूं कि पुरानी बातों की तलाफी करने के लिए अच्छे बन जाओ, मर्द बनो, मुझसे हार जाओ। क्या हारोगे? मेरी बेटी को मुझसे हार जाओ। उसका दिल बहुत ही नाजुक है, बाल बराबर। अगर वो बाल सामने से हट गया तो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। मेरी बेटी कहती है, बाबा मुझे मारी है चूंकि मेरा दिल अर्दलान की तरफ झुक रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हार जाऊंगा। दोस्त और दुश्मन सबसे हार जाऊंगा। मर्द रहो और मुझे हारने से बचा लो। तुम हार जाओ। सुना है अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो। क्या हो रहा है इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन कहता हूं कि अपनी बेटी की सलामती के नजरिए मांगो कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दोगे। हार जाओ। 20 साल पहले तुमने साबित किया कि वादा नहीं कर सकते हो, लेकिन आज हम दोनों में एक चीज मुशाहबत रखती है, और वो ये है कि हम दोनों बाप हैं। चूंकि इस वक्त तुम्हारी अपनी बेटी है, तो समझ सकते हो जब एक बाप अपनी बेटी से कहता है कि फलां तुम्हारे लिए नुकसानदेह है तो क्या मतलब। मुझसे हार जाओ, ठीक है? खुदा तुम्हारी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए।
मैं तो समझ रहा था कि भी लड़ाई झगड़ा पुलिस थाना ये सब कुछ होगा। जली साहब तो हंसी खुशी यहाँ से जा रहे थे, वो क्यों आए और क्यों चले गए? जली साहब की बीवी फोन पर बहुत डरी हुई थी। अर्दलान, तुम्हें मरियम को मांगने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल।
एक मूसा खुरुशान था, सांवला सा, उसके पाँव के तलवे साफ थे। जलील साहब के क्लब के ऊपर उसका घर था, याद है?
हाँ याद है।
हमेशा कहता था कि ये जलील साहब की कुश्ती में एक कमजोरी है, और वो ये कि रकीब का हाथ नहीं पड़ पाते, यही कमजोरी है। सही कह रहा था, वो रकीब का हाथ नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ सकते तो देख लेते, मैं तो सबसे बड़ा हारा हुआ हूँ। देखो मेरे हाथ पर ड्रग्स रख कर कहता है, गिफ्ट लाया है मेरी बेटी के लिए, और मैं कुछ कह भी नहीं सका। तुमने कहा मैं मरियम को पाने का हक नहीं रखता, ठीक है नहीं रखता। जलील साहब के बकौल मरियम को भूलने और उसके साथ बेवफाई से लेकर पहली बार राना से इजहार मोहब्बत करने तक सब झूठ था। अम्मी का जनाजा नर्सिंग होम से लेकर इस वक्त तक, जो मेरे हाथ में ड्रग्स रखा, मेरा दिल बहुत ज्यादा मजबूत था, मेरे हाथ मजबूत थे। उस दिल बनना भी आसान नहीं है। तुम्हारी कसम, क्या मैं वाकई एक बुजदिल था? लेकिन अब आज के बाद छुट्टी लेकर एक बुजदिल बनूंगा, कमरे में पड़ा रहूंगा। कहो अच्छा,
क्यों नहीं उससे कुछ कह सके तू? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी बेटी के हाथ पर ड्रग्स रख के चला गया और तुम कुछ नहीं कह सके उसे, लेकिन क्यों?
चूंकि मुझसे गलती हुई है,
जब तुम्हारा कोई बड़ा कमरे में आए तो उठकर सलाम किया जाता है उसे।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम अस्सलाम। उस लड़के ने पहले से बता दिया था यहाँ आएगा वो, स्कूल जाना और हम सब की बेइज्जती करना, वो भी प्लान के मुताबिक था तुम्हारा। अपने बाप को प्रेशर में डाल रही हो ताकि ईरान से जाकर एडिक्ट हो जाओ तुम, वहाँ जाकर उस लड़के के साथ मिलके गली कूचों में घूमो और नशा करो, इसलिए कि वो तुम्हें चाहता है। समझती हो कि दीवाना है तुम्हारा, जब तक पैसे हैं तब तक तुम्हारे साथ रहेगा। ड्रग्स तुम्हारे बाप के हाथ पे रखता है और कहता है कि अपनी बेटी को दे दो वरना उसे एडिक्ट बना दूंगा मैं। तुम ये सब किससे कब खत्म करोगी?
कौन से किस्से?
क्यों, कितने किस्से हैं?
मरियम जमान के किस्से के अलावा और भी कुछ किस्से हैं, जैसे मेरा किस्सा, फरजाद का किस्सा।
मरियम जमान को अपने और अपने बाप के किस्से में मत मिलाओ। तुम हर वक्त इस बारे में अपने बाप से लड़ाई झगड़ा करोगी। उस लड़के का किस्सा अब खत्म करो। तुम बेवकूफ पागल लड़की, ना समझ लड़की, कब ये सब ठीक होगा?
मैं खलफ बनना किससे सीखती? बताइए मोहम्मद जवाद अंकल, कहिए अपने बाप से कि जिसकी हंसी 6 साल तक दिखी तक नहीं, या अपनी अम्मी से जो 13 साल की उम्र में मुझे छोड़कर चली गई?
तो फिर दुनिया को क्यों तहबाला कर रही हो कि अपनी अम्मी के साथ जाओगी जिसने तुम्हें छोड़ दिया
था? मैं अपनी चाहत को हासिल करने के लिए ऐसा कर रही हूँ, मेरे जाने के लिए, फरजाद के लिए।
तुम्हारे बाप के बारे में क्या क्या जानता है?
आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते?
मेरे सवाल का सवाल से जवाब मत दो।
आपका जवाब बाबा के पास है।
पहले तुम जवाब दो।
जवाब दूंगी, अगर मेरा पासपोर्ट नहीं दिया तो जवाब दूंगी। आप उनसे कह दीजिए या तो मेरा पासपोर्ट मुझे दे दो ताकि जिसके साथ मेरा दिल चाहे चली जाऊं, या फिर मैं वो कहूंगी जो मुझे नहीं कहना चाहिए।
मजवा साहब,
मुंह बंद रखो यार, जाओ तुम। तुमसे क्या गलती हो गई है? वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है? तुम्हारी बेटी तुम्हारे बारे में क्या जानती है? क्यों तुम पर हमले करने पर तुली? तुमने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया है जो तुम्हारी बेटी तुमसे जंग के लिए तैयार है? कैसी कसाफत तुम्हारी जिंदगी में है? नहीं बताओगे? ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा।
मैं देखती हूँ। जी कौन?
अर्दलान के खिलाफ क्या है तुम्हारे पास जो इतनी आसानी से ड्रग्स उसके हाथ में रख सकते हो? वो तो मुझे कुछ बता नहीं रहा है।
ड्रग्स? ड्रग्स क्या है?
मेरे सामने एक्टिंग मत करो। तुम्हारे पास क्या है उसके खिलाफ?
अरे भाई, गलत फहमी हुई है।
तुम कहो मेरे मरहूम बाप की कसम गलत समझा है वो, बोलो मेरी अम्मी की कसम वो गलत समझा है, बोलो खुदा की अजमत की कसम वो गलत समझा है, बोलो।
मैंने जो भी किया है वो सिर्फ खुदा जानता है, और वो सत्तारुल उयूब है। कदम ब कदम हर सांस तुम्हारे पीछे आऊंगा। अगर उस घर और घराने के आसपास भी नजर आए तो कानून का सहारा लूंगा। ये लो, अपना सामान संभालो।
मेरी वाहिद खुशी ये है कि अभी तक तुमने झूठी कसम नहीं खाई है, लेकिन अब जाओ, इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। आग किया तुम्हें फरजाद, आग किया मैंने तुम्हें।
क्या जबड़ा है सुल्तानी साहब के पास, आधे घंटे से पार्किंग में मीटिंग किए हुए।
सलाम अलैकुम बाबा।
सलाम अलैकुम बाबा।
वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं?
जैसे ही आपने मुझे फोन किया मैं फौरन ही घर से निकल आया।
फौरन? लेकिन क्यों? आ गई क्या तूबा बेगम? دیکھنے آئی ہو کہ میرے چہرے پر کہیں مار پیٹ یا زخم کے نشان تو نہیں ہیں؟ دیکھ رہی ہو مریم، تمہاری امی سمجھتی ہیں کہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی ایک ہاتھ سے چار لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔
ارے بابا جان کیا کر رہے ہیں؟
نہیں بولنا ہے تو نہیں بولو، اب اردلان تم سے نہیں ملے گا۔ سیریل دیکھ رہے ہو؟
مجھے جتنا معلوم تھا لکھ لیا۔
ارے یہ تو ختم ہو گیا۔
بابا جان،
بیٹا،
اردلان کے ساتھ مریم کے معاملے کا بھی حل نکالنا پڑے گا۔
حل نکالنا پڑے گا؟ کیا مطلب؟ کوئی پزل ہے کیا؟
اس کی ہمت کیا؟
اس کی ہمت بیٹا، مریم یا اردلان؟ دیکھو مریم کے بارے میں تو تم غلط سوچنا بھی نہیں۔
جی بابا جان،
جیتے رہو بیٹا۔
دیکھا اتنے ہنگامے کی ضرورت نہیں تھی، اب جاؤ اپنے بیوی بچوں کے پاس، وہ تنہا ہیں۔
جی امی جان،
تم بھی جاؤ سو جاؤ۔ ٹھیک،
معاف کیجیے بابا جان۔
خدا حافظ بابا۔
سلام کہنا بچوں کو، بھی پیار کرنا۔ خدا حافظ۔ تم اپنے لیے بھی چائے بنا لیتی بیگم؟
دیکھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔
کون؟ مریم؟ ہاں تو
زندگی بھر اسی کمرے میں تنہا اکیلی رہ جائے گی، میرے مرنے کے بعد بھی، تم دیکھ لینا۔
ارے اسی نے تو کہا تھا، جا کر معاملہ رفع دفع کر دیجئے۔ تم نے خود بھی تو دیکھ لیا توبہ، غلط کہہ رہا ہوں؟ دل کی بات جو بھی ہو انسان نہیں مانتا؟
دل دل میں فرق ہے، آپ نے تو کہا تھا مریم کے بارے میں غلط بھی مت سوچنا۔
خدا کی مصلحت پر قربان جاؤں ایک چھت اور دو موسم، ایک گرمی کا موسم تو دوسری طرف سردی کا موسم۔
چھت کی اس طرف آپ سے شرماتی ہے اور دوسری طرف اپنے آپ سے شرماتی ہے۔
میں نہیں کر سکتا توبہ، کیسے ممکن ہے؟ تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے توبہ بیگم۔
میں تو بس ایک بات جانتی ہوں، میں اور آپ ہزار سال نہیں جیئیں گے۔ میں تو 50 سالہ مریم کو دیکھ رہی ہوں، 60 سال کی عمر، اس کی تنہائی، اس کا بڑھاپا۔ مریم ہمیشہ ہمیشہ اسی کمرے میں، اسی اسکول میں رہے گی، دیکھ لینا۔
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
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 مریم صاحبہ، میرا مقصد صرف،
دیکھو مینا، اسکول کے معاملے گھر اور گھرانے کے معاملوں سے بالکل الگ ہیں. اب تمہارا مقصد اچھا رہا ہو یا نہ رہا ہو.
جی شکریہ. حاجی ثانی کی نمائندہ آئی ہوئی ہیں حساب کتاب کے لیے.
ہاں تو یہ سب کیا ہے؟
یہ سب پچھلے سال کے حساب کتاب ہے میڈم.
السلام.
اسکول کے آخری دن ہے اور حاجی ثانی کی نمائندہ آئی ہیں کہ تمہاری کھال کھینچیں.
بس آرام سے کھینچے گا، مجھے درد نہ ہو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زمان صاحبہ، اصلی کاپی آپ کے پاس ہے؟
اصلی کاپی؟ ہاں لیجیے، میری میز میں ہے.
ٹھیک ہے،
تو شروع کرتے ہیں. تو یہ ان بچوں کی لسٹ ہے جن کے لیے ایکسٹرا کلاس رکھی گئی تھی. یہ 33 لڑکیاں ہیں. اگر ان کو 4.5 لاکھ تومان کے حساب سے دیکھا جائے تو 33 کو 4,500 میں ضرب دیں گے تو ہوگا 14,08,50,000 تومان.
4.5 لاکھ تومان نہیں ہے، 45,000 تومان لکھا ہے. دیکھو 45,000 ہے، 4.5 لاکھ پڑھائے تم نے.
دھیان کہیں اور تھا میرا.
زمان میڈم، آپ کے میز میں کچھ بھی نہیں تھا.
کچھ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟
اب میں کیا بولوں،
میری فائل والی میز بھی نہیں ہے کمرے میں.
نہیں معلوم.
ارے تو جائیے، دیکھیے، چیک کیجیے، پھر کچھ بولیے نا. دیکھیے ذرا، وہی چھوٹی والی چابی، چھوٹی والی چابی، وہی دراز کی چابی ہے.
ٹھیک ہے،
ہاں تو 33 کو 4.5 لاکھ میں ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا؟ وہ ایک بچے گا تو 8.5 لاکھ ہے.
میں کسی اور دن آ جاؤں؟
نہیں ابھی کرتے ہیں نا. 4.5 لاکھ کو، ٹھیک ہے، کسی دوسرے دن آ جائیے گا.
محمد جواد اور اردلان بہت دنوں سے دوست ہیں اور فطری بات ہے کہ میں ان کے سارے معاملات جانتی ہوں.
کوئی بات نہیں، میری یہ حالت ختم ہو جائے گی جلدی.
اگر ختم نہ ہوئی تو؟
ختم ہو جائے گی.
اس کی بیوی آسٹریلیا سے واپس آ گئی، اس کی پہلی بیوی. جانتی ہو، میں محمد جواد اور اردلان کے تعلقات کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سمجھ پائی. محمد جواد ایک سیدھا سادھا شریف اور خوش مزاج انسان ہے، لیکن اردلان مجھے ہمیشہ طوفان کی یاد دلاتا ہے. ایک بات اس کے بارے میں سمجھ سکتی ہوں، البتہ یقین نہیں ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے وہ جیسا کہ اظہار کرتا ہے، غصے والا، ڈسنے والا اور سخت دل نہیں ہے. تمہارے بابا کل وہاں گئے تھے آخری تیر چلا کر آئے ہیں. محمد جواد تو کہہ رہے تھے واقعی آخری تیر تھا. جب گھر واپس آئے تو دل بھر آیا اور اردلان کی بات کی.
کہو اچھا ابھی بھی اس کی زبان پر رہتا ہے؟
السلام علیکم. کچھ سوال آپ کے ساتھی کے بارے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس کا مرڈر ہو چکا ہے, مسٹر نائبی کے بارے میں.
اے نبی یہ تیری امت ہے عجیب اس کی حالت, نہ وقار ہے نہ عزت, ہے قدم قدم پہ ذلت. اے نبی ہمیں پتا ہے تجھے قوم سے گلا ہے, لو خبر تم اس کی مولا, کرو دور اس کا نالا, نبیوں کا واسطہ ہے ولیوں کا واسطہ ہے.
منو به حال من رها نکن, تو که برای من همه کسی, اگه هنوزم عاشق منی چرا به داد من نمیرسی. من از تصور نبودنت رو شونه تو گریه می کنم, منی که دل بریدم از همه, ببین برای تو